दंडोत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोलय ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कुंभे बधा जल रहे जलविन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मंद्र है गुरबिन ज्ञान न होए। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमणि के माध्यम से हम लोगों को परम ज्ञान दे रहे हैं। और मन किस प्रकार वश में हो उसके लिए ध्यान की विधियां प्रातःकाल अभ्यास कराई जाती है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज वह परम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आप लोगों को दे रहे हैं, जिस ज्ञान को पाकर व्यक्ति सभी दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सुखमणि को प्राप्त कर लेता है। सुखमणि हमारे जीवन का लक्ष्य है। यदि इस जीवन को पाकर कोई व्यक्ति सुखमणि को पा लेता है तो समझ जाओ उसका जन्म लेना सार्थक है। यदि इस पावन पवित्र जीवन को पाकर सुखमणि को प्राप्त नहीं किया और जगत के सारे पदार्थ पा लिए तो समझो कि वो दो कौड़ी भी प्राप्त नहीं किया, उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जीवन का एक ही लक्ष्य है परम सत्य की अनुभूति, और परम सत्य यदि कोई है तो वह है वाहेगुरु अकाल पुरुष सुखमणि साहिब। सत्यम परम धीमहि, भागवत का पहला मंत्र है। भागवत में वेद व्यास जी ने भागवत आरंभ करने से पहले किसी की मंगलाचरण नहीं किए, वो एक अकाल पुरुष की मंगलाचरण किए। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है वही सुप्रीम बीइंग है और वही सुप्रीम बीइंग सबके अंदर बुद्धि को प्रकाश रहा है। बुद्धि का आधार और अधिष्ठान है, जिसके बारे में गुरबाणी प्रमाण है, सभय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। सुखमनी साहिब में ब्रह्म ज्ञानी की बहुत महिमा है, बहुत ज्यादा। लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान को हम किस प्रकार प्राप्त हों, उसके लिए दो बातों का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। एक, ऐसे पुरुष, ऐसे संत, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की खोज जिसने आत्मा को परमात्मा रूप से जाना है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोई। वो जिधर भी देखता है एक वाहेगुरु का ही दर्शन करता है। ब्रह्मज्ञानी जब आंख बंद करता है तो परमात्मा को अंदर एक देखता है, जब वो आंख खोलता है तो अनेक में एक को देखता है। अंदर तो एक का दर्शन करता ही है, लेकिन जब आंख खोल करके देखता है तो ये देखता है कि यह संसार एक तरंग के समान है। तरंगे अनेक हो सकती है लेकिन सागर तो एक ही होता है, और सागर में जो भी तरंग उठता है, बुलबुले बनते हैं, वो सागर से बनते हैं, सागर के सहारे टिकते हैं, सागर में लीन हो जाते हैं। इसी तरह से परमपिता परमात्मा वाहेगुरु अकाल पुरुष के सहारे यह जो सारा संसार है तरंग और बुलबुले के समान है। परमपिता परमात्मा सागर के समान है और यह सारा संसार तरंग के समान है। परमात्मा में ये पैदा होते हैं, परमात्मा के सहारे टिके हैं, बाद में परमात्मा में लय हो जाते हैं। परमात्मा व्यापक है, अकाल पुरुष व्यापक है, और ये व्याप्य है। व्याप्य का भाव ये है थोड़े देश में रहने वाला, सीमित है। परमात्मा असीम है, बेअंत है, अनंत है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी की बहुत महिमा बता रहे हैं, बहुत ज्यादा। हमारे अनुभव में हमने बहुत ग्रंथों को देखा है, बचपन से और कुछ तो किया ही नहीं, एक ही काम किया, लेकिन इतनी महिमा ब्रह्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञानी की किसी ग्रंथ, एक ग्रंथ में नहीं देखा है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए शास्त्रों में सात भूमिकाएं बताई गई है। इसको खास करके ध्यान के विद्यार्थी जो मेडिटेशन में आते हैं वो विशेष सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि उसमें भी ये बताई जाएगी। सेवन स्टेप्स हैं उस क्लाइमेक्स में पहुंचने के लिए। वेद का मंत्र है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। जो व्यक्ति आत्मा का दर्शन करना चाहता है वह पहले किसी ब्रह्मज्ञानी के मुखारविंद से उनके ब्रह्मज्ञान को सुने। और कैसे सुनना है? बुद्धि को परे करके, अपने मन को परे करके, जितनी चतुराइयां हैं, जितनी चलाकियां हैं, जितना ज्ञान है, उसको थोड़े देर के लिए पर्स में रख करके सुनना है। टोटल एक्सेप्टेंस, जो बताया जा रहा है उसको टोटल एब्जॉर्ब होने दो। ये सुनने की कला है, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। जिस व्यक्ति को सुनने की कला आ गया वह सुनते सुनते भी मोक्ष को पा सकता है, श्रवण मात्रे ने स्व आत्म उपलब्धि, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, पहले ब्रह्म ज्ञानी के वचन को ठीक से सुनो और सुनने के बाद मनन करना है, जो सुना है उसको मनन, उसी अनुसार से मनन करना, उसमें अपनी बुद्धि को अपनी मति को नहीं डालना है, जैसा सुना है वैसा ही चिंतन करना है। इसी को गुरुमुख कहते हैं और गुरुमत कहते हैं। जो अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है वो मनमत है। श्रोतव्य मंतव्य, फिर है निधि ध्यासितव्य। अपनी वृत्ति को जैसे तेल गिराओ, सरसों का तेल गिराओ धरती पर तो एक धार बनकर के गिरता है, इसी तरह से एकांत में बैठकर ब्रह्म का चिंतन जो है, जब ध्यान करो परमात्मा का, तो तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए, तेल धारा के समान एक ही। अंदर जो है एक ब्रह्म के अलावे, एक वाहेगुरु के अलावे, एक अकाल पुरुष के अलावे और कोई दूसरा फूरना ना रह जाए, जैसे तेल धार सहित होता है, ऐसे ही तुम्हारी वृत्ति जो है अंदर वाहेगुरु जैसा हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। जब तुम निधि ध्यासन करोगे, ब्रह्माकार वृत्ति बना लोगे, तो समय पा करके ब्रह्मज्ञानी आपको उपदेश करेंगे और उस उपदेश से जन्म जन्मांतरों का जो तुम्हारा अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे अंदर परम प्रकाश का आविर्भाव हो, तुम इनलाइटेंड हो जाओ। ज्ञान की सात भूमिका है, यह विषय ब्रह्मज्ञानी की चर्चा है, इसलिए हमें बताना भी आवश्यक मैं समझता हूं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर उस परम अमृत को अर्थात ब्रह्म ज्ञान को पाने की लालसा है, इच्छा है, तमन्ना है, जिज्ञासा है, प्यास है, तो उसके लिए ये सात पौड़ियों पर चढ़ना आवश्यक है। पहला है शुभ इच्छा, दूसरा है सुविचारना, तीसरा है तनुमानसा और चौथा है सत्वापत्ति और पांचवा है पदार्था, पांचवा असंशक्ति और छठा है पदार्थाभामनी और सातवां है तुरिया, तुरियावस्था। जो पहला है शुभ इच्छा, तीन अवस्थाएं अज्ञान की हैं और चार अवस्थाएं ब्रह्मज्ञान की हैं। पहले तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि जब तक किसी को ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है तो ये स्वीकार कर लेना कि मैं अज्ञानी हूं, ये बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, हिला के जगा सकते हैं, लेकिन जो जागा हुआ है और आंख बंद करके लेटा हुआ, जिसको मचला कहते हैं, उसको जगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि मैं अज्ञानी हूं, तो उसके दरवाजे खोले जा सकते हैं, उसको ब्रह्म ज्ञान दिया जा सकता है। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है और पांच चार किताबें पढ़ करके या इधर उधर की टेपें सुन करके भ्रम हो गया कि मुझे ज्ञान है, वह व्यक्ति किसी महापुरुष के पास नम्रता पूर्वक ना ज्ञान सुनेगा, ना उनकी सेवा करेगा, न उनके ज्ञान का मनन करेगा। वह व्यक्ति जो है कम से कम इस जीवन को तो व्यर्थ गंवा देता है। जो जानता नहीं है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है और ब्रह्म ज्ञान का अहंकार है, ये बहुत खतरनाक होता है। वह तो व्यक्ति अपना जो है यह जो वर्तमान जीवन है वह समाप्त कर बैठता है। इसीलिए जब ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो यह स्वीकार कर लेना कि मैं अज्ञानी हूं, यह बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो स्टेप टू स्टेप। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली जो भूमिका है, पहली पौड़ी जो है वो है शुभ इच्छा। आपके अंदर सुबह से शाम तक शुभ इच्छा हो, शुभ करने की भावना हो, एवरी टाइम कॉन्शियस रहना है कि हमसे किसी का बुरा ना हो जाए, मन से, वाणी से और शरीर से शुभ इच्छा। और शुभ इच्छा में क्या है कि यदि तुम्हें भाग्यवश कोई ऐसा महापुरुष मिल गया है तो उस अवसर को कभी गंवाना नहीं। मौजूदा महापुरुष को जो व्यक्ति जानकर अपने को सरेंडर कर देता है उस परम ज्ञान के लिए, यही शुभ इच्छा है, और कोई शुभ इच्छा नहीं है। शुभ इच्छा यह है कि ये संकल्प कर लेना कि हम भावे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए, इनसे ब्रह्म ज्ञान को सुनकर सुनिया मनिया मन कीता भाव, पहले सुनेंगे फिर मनन करेंगे फिर निधि ध्यासन अर्थात अभ्यास करके उस परम पद को पाएंगे। शुभ इच्छा ये है कि सत्संग में आओ तो यहां पर आकर के प्राणों से सुनना है, प्राणों से इसलिए सुनना है कि हमने अपने को बदलना है, इसलिए नहीं सुनना है बुद्धि के विकास के लिए नहीं, या इसलिए नहीं कि हमने सुन करके लोगों को सुनाने के लिए। तो इससे तो अच्छा टेप रिकॉर्डर है, वो तो सही सही पूरा पूरा सुना देता है, फिर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं। हमने सुनना है अपने को बदलने के लिए, इसको कहते हैं शुभ इच्छा। शुभ इच्छा के बाद है सुविचारना। जैसा सुना है वैसा घर में जाकर रास्ते में जाकर उसका चिंतन करना है। जैसे कंजूस व्यक्ति पैसे का चिंतन करता है कि एक पैसा मेरा कम ना हो जाए खजाने से, जैसे कामी पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, कामी स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, ऐसे जिज्ञासु को जो सत्संग में बताया गया है उसका चिंतन करना है, और कोई चिंतन नहीं करना। जैसा बताया वैसा, उसमें थोड़ा भी मिलावट अपनी नहीं करनी, क्योंकि गुरुमत का मतलब यही है कि अपनी सारी विचारों को सारे ज्ञान को पासे करके जैसा गुरु कहता है वैसा विचार करना। शुभ इच्छा उसके बाद सुविचारना। जैसे एक पशु चारा खा लेती है गौ, और खाने के बाद उसको बाहर थोड़ा थोड़ा निकाल करके फिर चिथती है और फिर अंदर लंघाती है, इसी तरह से जब यहां सत्संग सुनो, सत्संग सुन करके तुरंत बातें चिते नहीं करनी है, गंभीर होकर अंतर्मुख होकर के विचार करते घर जाना है और उसकी गहराई में डूबना है, उसको कहते हैं सुविचारना। शुभ इच्छा, दूसरा है सुविचारना, और तीसरा है सत्व। शुभ इच्छा, सुविचारना, तनुमानसा। तनुमानसा का भाव ये है कि अपनी वृत्ति को परमात्मा के साथ जोड़ना, अभ्यास करना एकांत में, अधिक से अधिक एकांत, अधिक से अधिक मौन, कम बोलना है और अधिक से अधिक अभ्यास करना है। संकोच करके रहना है एक साधक की तरह, यह है तनुमानसा। तनुमानसा का भाव यह है कि अपने मन को अंतर्मुख रहना है, बहिर्मुख होने से रोकना है। ये तीन जो है अज्ञान की भूमिकाएं हैं, शुभ इच्छा, सुविचारना, तनुमानसा और सत्वापत्ति। चौथी भूमिका जो है वो सत्वापत्ति है। चौथी अवस्था में व्यक्ति को सत्य का अनुभव हो जाता है, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, सत्य क्या है असत्य क्या है। गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और स्वयं की कृपा से उसको सत्य का अनुभव हो जाता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सारे जड़ हैं और इसको जानने वाला जो चेतन है, आत्मा साक्षी, वह प्रभु का स्वरूप है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म तामे माने अंध। राग द्वेष सुख दुख ये बुद्धि के धर्म है, मन के धर्म है। जो साक्षी है आत्मा वो ब्रह्म स्वरूप है, ये सत्वापत्ति। और सत्वापत्ति के बाद असंशक्ति। उस व्यक्ति के अंदर जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, उसका बीच बीच में संसार में बुद्धि तो जाता है लेकिन वो बुद्धि को लौटा लेता है। चौथी भूमिका में पांचवी जो है असंशक्ति, वह संसार से एकदम अलग थलग रहने लग जाता है। पांचवी भूमिका में उसको संसार से कोई रुचि नहीं रहता, अब उपरांता हमेशा ऑलवेज वो अपने अंदर ही रस लेते रहता है, बाहर उसको कोई विशिष्ट रुचि नहीं रहती। और छठी भूमिका जो है पदार्थाभाव। छठी भूमिका में व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता कि संसार है भी या नहीं है। उसको कोई रोटी खिला दे तो वो खा लेता है और नहीं तो एक मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। छठी भूमिका उसका यदि कोई केयर करे तब जाके उसका शरीर ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है, नहीं तो वो उसको अपने शरीर का भान नहीं होता। छठी भूमिका ऐसा कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जब वो कहीं जाते थे तो उनके जितने फॉलोवर्स थे वो आगे कोई भी आने वाले को ये मना किया जाता था कि कोई राम राम ना बोले, क्योंकि यदि किसी ने नमस्कार कर दिया राम राम तो उनकी वृत्ति जो है एकदम अंदर तदाकार हो जाती थी और शरीर काम नहीं करता था, वही कई घंटों तक निढाल हो जाता। इसलिए उनके आसपास ने लोगों को मना था कि राम राम, क्योंकि उनकी वृत्ति जो है कभी कभी बाहर आती थी और राम कहा नहीं के बस वो डूब जाते थे। छठी भूमिका में थे। और सातवीं भूमिका में जब वो गए, एक पंजाब के संत थे तोतापुरी, उनकी कृपा हुई, फिर सातवीं भूमिका में तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था में ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ब्रह्म दिशा ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हरा, प्रभु बिना नहीं जानी। उसको एक सेकंड के लिए भी संसार नाम की कोई चीज है एक ख्याल नहीं रहता है। तुरिया अवस्था सातवीं भूमिका। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी महिमा को साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की चर्चा होने के कारण मेरे अंदर यह चित था कि ये जो भूमिका है ब्रह्म ज्ञान की ये बता दी जाए आपको। ऐसा जो व्यक्ति है जो ब्रह्म ज्ञानी है, सर्वभूतस्थ मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, वो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सम में सारे में एक परमात्मा का दर्शन करता है। सर्वभूतस्थ मात्मानम, सारे प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है और सारे के अंदर जो आत्मा है वो अपने अंदर देखता है, कोई भेद नहीं रह जाता है। सर्वभूतस्थ मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नानेन हेतुना, वो सब में जो है ब्रह्म का दर्शन करता है और मस्त रहता है, आनंदित रहता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज उपदेश कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, सिर्फ एक के ऊपर। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्म है वो ना परा, जीव ब्रह्म का स्वरूप है इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का द्वैत भाव मिट जाता है, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जानता है कि नाश शरीर का होता है, इंद्रियों का होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमा, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर बहुत नम्रता होता है। यहां गरीबी का भाव है नम्रता। जैसे साहेब गुरु नानक देव जी महाराज के अंदर कितनी नम्रता है और ऐसा साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज का भी देखो, कहते हैं जब श्री चंद जी आए तो साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत सत्कार किया करते थे श्री चंद जी को, क्योंकि श्री चंद जी तपस्वी थे और हमेशा उपराम रहते थे अपनी ब्रह्म अवस्था में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती है। श्री चंद जी कहते हैं कि अर्जन तुमने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखा है। नम्रता के पुंज साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि आपके चरणों के धूल को साफ करने, उनके चरणों को पकड़ लिए, जबकि वह साक्षात परमात्मा है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज लेकिन नम्रता के भी पुंज है और शहीदों के सिरताज हैं। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमा, ब्रह्म ज्ञानी ही उपकार करता है, दूसरा और कौन करेगा। वह लोगों को सुख देने के लिए अपने प्राणों को बाजी लगा देता है। एक समय की बात है, एक ब्रह्म ज्ञानी संत थे दधीची, तो एक वित्रासुर राक्षस था, उसने तपस्या करके बहुत शक्तियां प्राप्त कर लिया था। वह देवताओं को खून लेकर के पिया करता था और उसको मार करके देवताओं का भोजन करता था। हाहाकार मच गया और उसको श्राप था कि तुम किसी ब्रह्म ज्ञानी संत के पसली के हड्डी से यदि धनुष बाण बनाया जाएगा उसी से मर सकते, वरना तुम नहीं मर सकते। देवता लोग ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते। देव जो योनि है वो भोग योनि है और मनुष्य योनि जो है ये कर्म योनि है। मनुष्य योनि देवता से भी महान क्यों है? क्योंकि व्यक्ति इस मनुष्य शरीर से चाहे तो परमात्मा को पा सकता है और नहीं तो गिरना चाहे तो इतना गिर सकता है कि पशु से भी नीचे गिर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सारे लोगों ने वो पता चला कि दधीची जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। देवताओं ने दधीची के पास गए, प्रार्थना किए कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप हम पर कृपा करें। किसी ब्रह्म ज्ञानी के पसली के हड्डी से यदि धनुष बाण बनेगा तो ये बित्रासुर मारा जाएगा, क्योंकि इसने बहुत ही जुल्म ढा रहा है। दधीची प्रसन्न हो गया, आनंदित हुआ। दान का भाव यह है देकर प्रसन्नता, ये नहीं कि दे करके दुख हो तो वो दान जहर हो जाता है। वो प्रसन्न हुआ, वो कहता है कि जो पाने योग्य चीज था वो तो हमने पा लिया है, लेकिन आज यह स्थूल शरीर जो नाशवान है, जल जाना था, उसका भी आज किसी का उपयोग हो रहा है, इसलिए आज मैं विशेष प्रसन्न हूं। उसने दधीची ने समाधि में बैठा और समाधि में बैठ करके अपनी वृत्ति को दशम द्वार में लाया और ला करके अपने हाथों से पसली के हड्डी को निकाल करके दे करके उसने प्राण को छोड़ दिया। उसकी ज्योत जो है आकाश में जाके महाज्योत में लय हो। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर परोपकार करने का उमंग होता है, चाह होता है, इच्छा होता है। वो किसी के दुख को देख करके नहीं रह सकते। एक समय की बात है, ब्रह्मज्ञानी बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले पहले मिलिट्री में थे, तो 1857 में दिल्ली में गदर था, तो लोग जो है उस गदर में लोगों को गुरुद्वारे में मंदिरों में उठा उठा के ले जाया करते थे बचाने के लिए। उस गदर में जो है लोग आगे लगा दिए थे लोगों के घरों में इस तरह से। एक माता, आप तो घर से निकल गई लेकिन उसका छोटा बच्चा 1 साल का वो घर में रह गया और घर के चारों तरफ अग्नि है छत के। वहां पर बार बार विनती करती है, सच्चे पातशाह जिस तरह से आपने प्रह्लाद को बचाया है अग्नि से, ऐसे मेरे बच्चे को। बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले जा रहे थे। संत का जीवन दूसरों के परोपकार के लिए। माता क्यों रो रही, क्यों दुखी है? माता कहती है मेरा पुत्र ऊपर रह गया, चारों तरफ अग्नि जल रही है, मैं निकल गया किसी तरह बच के, वो मेरा पुत्र कैसे बाहर आ गया? कहती चिंता ना करो, तुम पौड़ियां लाओ। पौड़ियां लाए, वहां पर कोई रस्सी नहीं था, बाबा करम सिंह जी ने अपने पग को निकाल करके पौड़ियों से बांध करके ऊपर चढ़े। चढ़ करके उस बच्चे को ऐसे कपड़े का बना करके झोली जैसा पीछे टांग लिए और उतरने। उनके साथ और भी लोग थे, लोगों ने मना किया कि आप ना जाओ। कहते हैं कोई बात नहीं, किसी के लिए ये शरीर भी जल जाएगा, कोई हर्ज नहीं। और बहुत जोखिम लेकर के उस अग्नि से बहुत मुश्किल से नीचे आए और देख करके प्रसन्न होकर के आगे चले। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, परोपकार करने की उसके अंदर एक भावना होता है, उत्साह होता है कि जो हमने साधना के द्वारा बहुत कठिनाई से प्राप्त किया है, जंगलों में रह के, पहाड़ों में रह करके, गुरु की सेवा करके, वह लोगों को सहज में मिल जाए। यह जो भावना है यह सिर्फ ब्रह्मज्ञानी के अंदर होता है। ब्रह्मज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी ले धावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी जो है संसार का कोई धंधा नहीं करता, हेरा फेरी नहीं करता, वह जो है अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल। ब्रह्मज्ञानी ले धावत बंधा, ब्रह्मज्ञानी जो है किसी बंधन में नहीं पड़ता। ब्रह्मज्ञानी का होय सो भला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला। ब्रह्मज्ञानी का होय सो भला, ब्रह्मज्ञानी जो भी करेगा मन से, वाणी से, हाथ से, वो भला ही करेगा। हो सकता है कि हमको आपको गलत लगे, लेकिन वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ब्रह्मज्ञानी सुफल फला, जो भी वो करेगा वो लोगों को फल ही देगा। उसका गाली देना, उसका झिड़कना, उसमें भी कोई राज होता है, वो भी लोगों को तार देता है। पुरातन समय में बहुत से ऐसे भी संत होते थे, महापुरुष ब्रह्मज्ञानी, जब कोई आना ना उसके पास जाके मत्था टेकना, तो पहले बहुत सी गालियां बोलने लगे। तो जो कच्चे होते थे वो तो चले जाते थे, जो पक्के होते थे लोग सत्संगी, वो टिके रहते थे। और कुछ देर के बाद वही संत जो गालियां देते थे उसको, वो बहुत प्रेम से फिर उसको बुलाना और फिर उसको ज्ञान देना और उसको इच्छित वस्तु दे देना, जो इच्छा मन में वो पूरा कर देना। क्योंकि चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी के संग कर ले उसका उधार हो जाता है, सगल उधार। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती है तो एक मोमबत्ती को वो नहीं जला सकता, हजारों को जला सकता है, लेकिन निवेशो गौरा हो, जो दूसरी मोमबत्ती है ना उसको थोड़ा नीवा होना पड़ेगा, नीवा होगा तो जल जाएगा, वो भी ऐसे सीधा रहेगा सूखे दरख्त की तरह, वो नहीं जल पाएगा, उसको नीवा होना पड़ेगा, नीवा होगा वो भी जल जाएगा। हजारों को जला देगा वो ब्रह्मज्ञानी, अपने जैसा बना देगा, उसका कुछ कम नहीं होगा, लेकिन जो बुझी हुई मोमबत्ती है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओह पारस कंचन करे। पारस बहुत जाए करेगा तो सोना बना देगा, अपने जैसा नहीं बना सकता। ब्रह्मज्ञानी जब भी बनाएगा तो अपने जैसा बनाएगा, यदि अपने जैसा नहीं बनाता तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, साफ बात। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, सारे उधार हो जाते हैं। नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार, इसलिए सारा संसार जो है उसका सिफत करते हैं, सलाहना। ब्रह्मज्ञानी का एक ही रंग, ब्रह्मज्ञानी का एक ही रंग होता है, अर्थात उसकी जो वृत्ति है परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, ब्रह्माकार वृत्ति होती, एक ही रंग, विषयाकार नहीं होता वृत्ति। ब्रह्मज्ञानी का बसे प्रभु संग, और ब्रह्मज्ञानी के संग जो है ऑलवेज परमात्मा वास करता है। ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी का नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार। ब्रह्मज्ञानी के अंदर जो है एक वाहेगुरु का नाम आधार होता है, एक नाम का ओट आसरा। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रह्लाद जपियो। ब्रह्मज्ञानी ऐसे ही चलते फिरते, सोते बैठते जागते, स्वस्वरूप आत्मा का चिंतन करते रहता है, जाप करते रहता है। ब्रह्मज्ञानी का नाम परिवार, और उसका जो परिवार है ना ब्रह्मज्ञानी का, वो नाम ही होता है, और कोई परिवार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जपें अवरह नाम जपावे। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्मज्ञानी अहंकार को त्यागने के कारण, क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच जो पर्दा है झीना सा पतला सा, वो है अहंकार का, वो हमको इकमिक होने से रोकता है। ज्यों ही जीव अपने अहंकार को त्यागता है, वैसे ही वो परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे एक बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाता है, ऐसे ही जीव जब अहंकार को छोड़ देता है और सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, तो परमात्मा के साथ मिलकर परमात्मा हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, वो ऑलवेज जागता है, ऑलवेज होश में होता है। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी के जो वृत्ति है, वो जो परम आनंद है सुखमनी, उसमें जुड़ा रहता है। उसकी वृत्ति ब्रह्माकार होने के कारण वो हमेशा परम आनंद में रहता है। ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी के अंदर जो है घर में, घर नाम यहां अंतःकरण। ब्रह्मज्ञानी का घर क्या है? अंतःकरण। वो ऑलवेज आनंद ही आनंद रहता, हमेशा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, ब्रह्मज्ञानी जो है आत्मा में परमात्मा में सहज रूप से वास करता है। जैसे एक बालक अपनी मां के गोद में सहज जाके बैठ जाता है, फिर खेलने लगता है, फिर सहज आके बैठ जाता है, इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी जो है कभी वो संसार का व्यवहार कर लेता है, फिर आके बैठ जाता है वाहेगुरु के गोद में, समझे ना? सहज, कोई उसको जो है कहता नहीं है, ना वो कोई परिश्रम करता है, लोगों के परोपकार करने के लिए बाहर आता है, फिर सहज रूप से बैठ जाता है वाहेगुरु की गोद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी का विनाश नहीं होता, क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई पानी गीला नहीं कर सकता, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। उसका नाश नहीं होता है आत्मा का, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी को यह ज्ञान होता है कि जिसका नाश होना है वो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है। मैं तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से रहित आत्मा हूं, और आत्मा परमात्मा का स्वरूप। ऐसा ज्ञान होने से उसको कोई नाश नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी जो है वो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मविद ब्रह्म है भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्मज्ञानी जो हित करता है, प्रेम करता है, वो एक के साथ करता है, एक निरंकार, एक वाहेगुरु, एक ओंकार। उसकी जो प्रीति है और किसी से नहीं होता। ये याद रखो, एक के साथ जो प्रीति है वो साधना है, और एक को छोड़कर और किसी से जो प्रीति है वो विषयों में फंसना है। सीधी सी बात, ब्रह्मज्ञानी के जो प्रीति है वो सदैव एक के साथ ही होता है, द्वैत के साथ उसका होता ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी का होय अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जो है हमेशा चिंता से मुक्त होता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ पे बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो है सहनसाह। वो एक सहनसाह की तरह हमेशा जीता है। ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी का जो मंत है, बुद्धि है, माता जी बाद में कर लेना, जाके बैठो। ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मन, ब्रह्मज्ञानी का जो मति है वो एकदम निर्मल होता है, अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल। ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी जो भी करता है वो समझो परमात्मा कर रहा है, क्योंकि भेद खत्म हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का बहुत बड़ा प्रताप है। ब्रह्मज्ञानी के बारे में मन बुद्धि से कहा नहीं जा सकता है कि वो कैसा है। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइए, ब्रह्मज्ञानी को बलबल जाइए, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइए। पूर्व जन्म का बहुत ज्यादा पुण्य हो, पुण्य का पहाड़ हो, तो ब्रह्मज्ञानी का दर्शन होता है। और साधुनाम दर्शनम पुण्यम, उसके दर्शन से मात्र, उसके पास बैठने से पुण्य होने लग जाता है। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइए, जो दर्शन है वो बहुत भागों से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ना संता। जब तक पुण्य का पहाड़ ना हो तब तक ब्रह्मज्ञानी का दर्शन नहीं होता। और यदि ब्रह्मज्ञानी को देख करके एलर्जिक हो तो समझो पाप का पहाड़ है, पहाड़ है पाप का। इसलिए संत अच्छे नहीं लगते। जैसे 105-6 डिग्री बुखार हो तो भोजन रखो ना उसको सामने, थोड़ा तो खा लो, वो मुंह फेरता है। इसी तरह से जिसके अंदर बहुत पाप हैं, उसको ज्ञान की बात, सत्संग की बात, संत का दर्शन, वो अंदर उसको जो है जाने का निजी का। ये खुद इसको टेस्ट कर लेना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। गुरुद्वारे में जाके प्रसन्नता हो, कीर्तन सुन के प्रसन्नता हो, सेवा करके प्रसन्नता हो, दान दे करके खुश हो मन, समझ जाओ पूर्व जन्म का पुण्य है। और एक चीज मैं कह देता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि तुम कुछ नहीं दान कर सकते हो तो एक काम कर सकते हो अपनी जिंदगी में, कि एक एक व्यक्ति, एक एक माताएं बहनें, एक एक भाई मित्र, कम से कम एक आदमी को इस नानक सर में जोड़ सकते हो। और मैंने वचन किया है कि वाहेगुरु के आगे उन लोगों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करूंगा, जिसके घर में जिसका पति शराब पीता है, है जी, वो शराब ना पीवे, उसके लिए अरदास करूंगा। जिसके घर में क्लेश होता है बहुत, एक दूसरे को देखने का मन नहीं करता, उसके लिए भी अरदास करूंगा। लेकिन कम से कम एक जोड़ेगा यहां पर लाएगा उसके लिए, क्योंकि तो कुछ दोगे मुझे तभी तो मैं भी दूंगा, फ्री में तो मैं भी देने वाला नहीं। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइए, बहुत भागों से जो है ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन होता है। ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाइए। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर जो है सो कुर्बान जाते हैं, बार बार बलहार जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। मैं तो सोचा था आज खत्म कर दें कम से कम शब्दों का अर्थ करके, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की इतनी महिमा है कि जो महेश्वर है, महादेव, देवों का देव जो है महादेव, जिसको जगत पूजता है, वो महादेव जो है ब्रह्मज्ञानी को खोजते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो है आप परमेश्वर होता है। समझे जी, एक समय की बात है, अफगानिस्तान में एक राजा था, उसके अंदर जिज्ञासा हुआ कि मैं ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करूं। उसका नाम था रहुगन। उसने मंत्रियों को बुलाया, सारे संतों को बुलाया और कहा कि पता करो कि इस धरती पर कौन ब्रह्मज्ञानी है, मैं उसके लिए प्राण भी दे सकता हूं। देखो, जब प्यास हो अंदर तो राजा भी राजपाट छोड़ करके खाक छानता है, प्यास ना हो। स्वामी जी वीकेंड में सत्संग आऊंगा तो मैं उसको कहने की जरूरत नहीं होता हूं, मैं इतना ही समझ जाता हूं कि बेचारे का भी पुण्य कम है, थोड़ा है। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की वेला पै पैसा। राजा रहुगन जा रहा है पालकी के ऊपर, उस वेले और साधन नहीं था, पालकी पर जा रहा है। रास्ते में एक कहार जो है, चार होते थे ना कहार ढोने वाले, एक कहार बीमार हो गया। एक संत, वो तो था संत, लेकिन मैं बताया ना वो छठी भूमिका में जो ब्रह्मज्ञानी होता है, संत होते हैं वो जो है मुर्दे की तरह लेटे होते हैं, किसी ने खिला दिया तो खा लिया, नहीं खाया तो अपना लेटे। एक लेटा हुआ था, मोटा ताजा तगड़ा आदमी। राजा कहता भाई देखो किसी को, कोई मजदूर जितना पैसा ले, पैसे का तो कोई नहीं, भावी सारा खजाना हो जाए। तीनों कहार ने देखा कि एक जो है लेटा हुआ है और है भी हटा कट्टा, उसको बुलाया कि चलो तुम जो है, राजा जो है एक संत के पास जा रहे हैं, क्योंकि किसी संत ने बोला था कि कलकत्ता के पास एक कपिल मुनि है, वो ब्रह्मज्ञानी है, कहां अफगानिस्तान और कहां कलकत्ता है, वो जा रहा है। और आपको मैं बताने कि ब्रह्मज्ञानी ही परोपकारी होते हैं, दूसरा तो होते नहीं है। दूसरा तो स्वार्थ लाख करह सब प्रीति, सुर नर मुन जन की यह रीति, सुर नर मुन जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। एक मिनट भी जो कोई प्रेम से बोलेगा ना कोई उसमें स्वार्थ हो, ऐसे तो कोई करते ही नमस्कार स्वार्थ के बगैर नहीं करते, उसमें भी कोई ना कोई। चलो, तो तीनों कहार ने जाके कहा कि हमें एक कहार की जरूरत है, आप इसमें लग जाएं। कहते हैं उसको जो कहते हैं, चलो मैं चलता हूं। ओ जी कहार का काम करने के लिए वो तैयार हो गए, उसका नाम था जड़ भरत। उसके पालकी के ऊपर राजा बैठा हुआ है, जा रहा है। राजा को जो जड़ भरत है देखता है, जहां पर कीड़े मकोड़े हैं कोई, तो वहां पर वो उछल जाता है कि पांव ना लग जाए। जब वो उछलता है तो पालकी हिल जाता है और राजा का सिर जो है पालकी के ऊपर लगता है। वो कहता भी ठीक से चलो, मेरा बार बार सिर लग रहा है। वो तीनों कहार ने कहा जी जो नया कहार आया है ना, ये थोड़ा कुछ ऐसा ही है। वो चलते चलते वो उछल जाता है, पता नहीं क्या बात है इसे। कहते कोई बात नहीं, इसको हम दंड देंगे। है जी, फिर जाकर के अंत में जो है अपनी चाल तो उसने वही चलना था, जब भी कोई कीड़े मकोड़े आवे वो थोड़ा जंप कर जाए, उसका सिर लगे हिल जाए। वहां पर ने व्यंग रूप से राजा बोलता है, कहता है मोटा ताजा शरीर सिर्फ बना लिया है, चलने नहीं आता है तुमको, चलने का अकल नहीं है। इतना ही कहना था, संत तो परोपकारी होते हैं कि जैसे आप दरख्त के ऊपर एक पत्थर मारो फिर भी वो दरख्त फल देता है, वो संत कहते हैं कि हे राजन, शरीर मोटा पतला होता है, आत्मा मोटी पतली नहीं होती, इतना ही बोलना था। हे राजन, जो जंप कर रहा है वो शरीर कर रहा है, मैं तो आत्मा हूं। और सजा तो तुम शरीर को दोगे, मुझको तो तुम सजा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं शरीर से अलग आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप। इतना कहना था कि राजा जो है पालकी से जंप करके नीचे आया और उसके चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि हमें माफ कर दें। आप कपिल ही तो नहीं हैं जो हमको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए यहां पर आए? आप तो साक्षात परमात्मा ही तो नहीं हैं जो हम पर दया करके यहां आए? मैं यमराज से नहीं डरता, मैं विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरता, लेकिन किसी ब्रह्म ज्ञानी से हमारा कोई अवज्ञा ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात ब्रह्म ज्ञानी हैं, मैं आपके उसके जो ना चरणों में अपना मस्तक रख करके रघुगण लौटने लगा पड़ा। जड़ भरत उठाता है और फिर उसको ब्रह्म ज्ञान देता है और वहीं से वो लौट जाता है। वो प्रसंग काफी लंबा है क्योंकि समय है ना, समय। वहां से ही वो लौट जाता है और साथ संगत जी यहां पर गुरु महाराज साफ कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप होता है और जो व्यक्ति इस ज्ञान का प्राणों से सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, अपने जीवन में घटाता है, उसका लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।